एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं और एक ऐसी विचार पर जो शायद हमारे सोचने के तरीके को काफी हद तक बदल सकता है।
हाँ, और ये आज के जमाने में बहुत जरूरी भी लगता है, जहां देखो वहां बस बहस टकराव।
बिल्कुल। तो किताब है एडवर्ड डी बोनो की सिक्स थिंकिंग हैट्स, छह सोचने वाली टोपियां।
हाँ, नाम तो सुना ही होगा बहुतों ने, काफी मशहूर है ये कॉन्सेप्ट।
और मशहूर होने की वजह भी है, ये कोई सिर्फ किताबी सिद्धांत नहीं है, मतलब ये एक प्रैक्टिकल टूल है, एक औजार है।
अच्छा, कैसे?
ये हमें सिखाता है कि कैसे हम किसी भी मुद्दे पर ज्यादा क्रिएटिव ढंग से सोचें, ज्यादा मिलजुल कर, मतलब सहयोगी बनकर,
और ज्यादा असरदार तरीके से।
हाँ बिल्कुल, चाहे अकेले सोच रहे हो या किसी ग्रुप में।
तो आज हम यही करने वाले हैं। डी बोनो की इस अनोखी सोच प्रणाली को, इन हैट्स को जरा ठीक से समझेंगे।
हाँ, और ये भी देखेंगे कि भाई रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या काम है, ना ऑफिस मीटिंग हो या घर का कोई फैसला।
बिल्कुल, मतलब इसका रोल क्या है और ये हमें अपने गोल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कैसे मदद कर सकते हैं।
तो शुरू करें फिर एडवर्ड डी बोनो से, इस कमाल के विचार के पीछे जो दिमाग है।
हाँ बताइए जरा इनके बारे में, कौन थे ये?
ये माल्टा के थे और बड़े दिलचस्प इंसान थे, मतलब कई रोल निभाए इन्होंने। डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, लेखक, कंसल्टेंट, सब कुछ।
अच्छा।
और दुनिया भर में माने जाते थे क्रिएटिव और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के शायद सबसे बड़े एक्सपर्ट।
और इनकी सबसे खास बात वो लैटरल थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना?
हाँ बिल्कुल, लैटरल थिंकिंग यानी पार्श्व सोच, उन्होंने ये शब्द गढ़ा। और उनका मानना था कि सोचना कोई जादू टोना नहीं है, कोई पैदाइशी हुनर नहीं,
बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है।
एग्जैक्टली, एक कला जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है।
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है,
मतलब हम सब बेहतर सोच सकते हैं,
ये तो बहुत उम्मीद बंधाती है।
और उनकी जो बैकग्राउंड थी ना, मेडिकल और साइकोलॉजी की, उसका मेल बड़ा अनोखा था।
कैसे?
देखिए, एक तरफ तो वो सोचने की प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखते थे, बिल्कुल लॉजिकली, और दूसरी तरफ साइकोलॉजी की वजह से वो मानवीय पहलू को भी समझते थे, हमारा ईगो, हमारे इमोशंस।
अच्छा, वो चीजें जो अक्सर हमारी अच्छी सोच के आड़े आ जाती हैं।
बिल्कुल, और शायद इसी समझ ने उन्हें ये सिक्स हैट्स जैसा, मतलब दिखने में सिंपल लेकिन बहुत गहरा फ्रेमवर्क बनाने में मदद की।
तो ये ढांचा इन्हीं रुकावटों को ध्यान में रखकर बना है।
तो किताब का जो मूल आइडिया है वो क्या है?
किताब का सार ये है कि भाई सोचने के जो हमारे पुराने तरीके हैं ना, उनको ये चैलेंज करती है और एक नया ज्यादा असरदार तरीका बताती है।
एक प्रैक्टिकल गाइड है सोचने को ऑर्गेनाइज करने की। हाँ, और वो पूछती है कि भाई पुराने तरीकों में गड़बड़ क्या है।
हाँ, क्या गड़बड़ है, हम तो सदियों से ऐसे ही सोचते आए हैं, बहस करते आए हैं।
और डी बोनो कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है, हमारी आम सोच, खासकर वेस्टर्न सोच, इसी बहस, इसी तर्क वितर्क पर टिकी है, एक साइड दूसरे के खिलाफ।
नतीजा टकराव, ईगो का क्लैश,
और समाधान अक्सर निकलता नहीं या बहुत देर से निकलता है। और हम करते क्या है, हम एक ही वक्त पर सब कुछ करने की कोशिश करते हैं।
हाँ, मतलब लॉजिक भी लगा रहे हैं, फीलिंग्स भी समझ रहे हैं, नया आइडिया भी सोच रहे हैं, पुरानी बातें भी याद कर रहे हैं,
और सब खिचड़ी बन जाता है।
हाँ,
डी बोनो इसकी तुलना करते हैं उस बाजीगर से जो हवा में बहुत सारी गेंदे उछाल रहा है
और किसी एक पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा।
बिल्कुल, हम इन्फॉर्मेशन भी देख रहे हैं, उसी वक्त उस पर अपने इमोशंस भी डाल रहे हैं, फिर सोच रहे हैं इसमें गलत क्या है, फिर कोई नया आइडिया लाने की भी कोशिश, नतीजा कंफ्यूजन, और कुछ हासिल नहीं होता।
तो फिर सोल्यूशन क्या है? यहीं पर डी बोनो का वो कमाल का आइडिया आता है ना।
हाँ, समानांतर सोच, पैरेलल थिंकिंग।
पैरेलल थिंकिंग, इसका क्या मतलब?
इसका मतलब है कि बहस करने के बजाय या एक दूसरे के खिलाफ सोचने के बजाय, ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब एक ही समय पर एक ही दिशा में सोचें।
अच्छा, जैसे सब लोग मिलकर एक ही नक्शे को देख रहे हो, अलग अलग एंगल से नहीं।
बिल्कुल सही। और इसे करने का तरीका वो है ये छह अलग अलग रंग की टोपियां,
सिक्स थिंकिंग हैट्स।
हाँ, हर रंग की टोपी एक खास तरह की सोच का, या कह लीजिए एक खास रोल का सिंबल है, प्रतीक है।
और ये टोपियां असल में पहननी नहीं है ना, मतलब ये सिर्फ एक मेटाफर है।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, असल में टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। आइडिया ये है कि जब सब लोग, मान लीजिए नीली टोपी पहने हुए हैं, तो सब उसी तरह से सोच रहे हैं।
इससे क्या होता है?
इससे सोच ज्यादा फोकस्ड होती है, ज्यादा क्रिएटिव बनती है, और सबसे बड़ी बात, ज्यादा सहयोगी बनती है, मिलजुल कर सोचने वाली।
और ईगो टकराव
वो कम हो जाते हैं, क्योंकि अब आप अपनी पर्सनल राय नहीं दे रहे, आप तो बस उस टोपी का रोल निभा रहे हैं जो आपने पहनी है।
वाओ, ये तो बड़ा दिलचस्प तरीका है
ना। तो चलिए अब इन 6 टोपियों को और उनके रोल्स को जरा गहराई से समझते हैं। शुरू कहां से करें?
नीली टोपी से करते हैं। आपने कहा था ये मैनेजर जैसी है।
हाँ बिल्कुल, नीली टोपी, इसे आप प्रोसेस का मैनेजर समझ लीजिए, या जैसे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर होता है ना।
अच्छा, कंडक्टर। तो इसका काम क्या है? क्या ये सिर्फ मीटिंग का लीडर ही पहनता है?
जरूरी नहीं, नीली टोपी का रोल है पूरी सोचने की प्रक्रिया को मैनेज करना, संभालना।
ओके, कैसे?
ये एजेंडा तय करती है, प्रॉब्लम क्या है या हमारा गोल क्या है उसे साफ करती है। ये तय करती है कि कौन सी टोपी कब इस्तेमाल होगी, कितनी देर के लिए होगी, मतलब सीक्वेंस और टाइमिंग। चर्चा को ट्रैक पर रखती है और आखिर में सब बातों का सार निकालकर निष्कर्ष या अगले स्टेप्स तक पहुंचने में मदद करती है।
तो ये कोई भी पहन सकता है?
हाँ, वैसे तो फैसिलिटेटर या लीडर पहनता है अक्सर, लेकिन ग्रुप का कोई भी मेंबर प्रोसेस पर कमेंट करने के लिए इसे पहन सकता है। जैसे कोई कह सकता है, एक मिनट, क्या अब हमें थोड़ी पीली टोपी की जरूरत है, या हमारा मेन गोल क्या था, कहीं हम भटक तो नहीं रहे।
समझ गई। तो ये पूरी चर्चा को एक स्ट्रक्चर देती है, फोकस रखती है। बहुत जरूरी है ये तो। अब अगली।
अगली है सफेद टोपी, व्हाइट हैट। ये बिल्कुल अलग है।
कैसे?
इसका रोल है पूरी तरह से न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव होना, तटस्थ, वस्तुनिष्ठ। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स पर फोकस करती है।
सिर्फ फैक्ट्स, मतलब कोई ओपिनियन नहीं, कोई अंदाजा नहीं?
बिल्कुल नहीं।
जैसे अगर हम किसी नए प्रोडक्ट पर बात कर रहे हैं तो सफेद टोपी पहनकर सिर्फ ये बताएंगे कि मार्केट साइज कितना है, कंपटीशन कौन है, लागत क्या होगी।
हाँ बिल्कुल, यही सफेद टोपी के तहत आप पूछते हैं, हमारे पास क्या जानकारी है, हमें और क्या चाहिए, वो मिलेगी कैसे। ये सिर्फ तथ्यों, आंकड़ों, डेटा की बात करती है। और डी बोनो एक जरूरी बात कहते हैं, वेरीफाइड फैक्ट्स यानी जिन्हें हम साबित कर सकते हैं, और बिलीव्ड फैक्ट्स यानी जिन्हें हम सच मानते हैं पर शायद सबूत ना हो, इनमें फर्क करना जरूरी है।
अच्छा।
और सफेद टोपी पहनकर आप अपनी व्याख्या, राय या भावनाएं नहीं बताते, बस जानकारी पेश करते हैं, जैसे कंप्यूटर डेटा देता है ना। इसका लक्ष्य है कि बहस करने से पहले सबके पास एक जैसी ठोस जमीनी जानकारी हो।
ये तो बहुत काम की चीज है। अक्सर बहसें इसीलिए उलझ जाती हैं कि फैक्ट्स पर ही सहमति नहीं होती। अच्छा, अब इसके बिल्कुल उलट कौन सी टोपी है?
वो है लाल टोपी, रेड हैट।
लाल टोपी।
हाँ, जहाँ सफेद टोपी ठंडे दिमाग से फैक्ट्स की बात करती है, वहीं लाल टोपी
दिल की बात करती है।
दिल की बात
मतलब
इमोशंस, इंट्यूशन, गट फीलिंग्स। इनका रोल है इन चीजों को सामने लाना, और वो भी बिना किसी सफाई के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के।
बिना सफाई के? ये थोड़ा अजीब नहीं है? मान लीजिए मीटिंग में कोई कहे, मुझे बस ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा, बस इतना ही।
हाँ, लाल टोपी के तहत इतना काफी है। आपको लंबा चौड़ा लॉजिक देने की जरूरत नहीं कि क्यों अच्छा या बुरा लग रहा है।
अच्छा,
आप बस कह सकते हैं, मैं इस प्रपोजल को लेकर एक्साइटेड हूँ, या मुझे इस प्लान से थोड़ी घबराहट हो रही है, या मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। छोटे सीधे बयान।
लेकिन इसका फायदा क्या?
डी बोनो का तर्क है कि भाई, इमोशंस तो वैसे भी हमारे फैसलों को असर करते ही हैं, चाहे हम दिखाएं या ना दिखाएं, है ना?
हाँ, ये तो है।
तो लाल टोपी उन्हें एक कंट्रोल्ड तरीके से, एक जायज तरीके से बाहर आने देती है, ताकि वो अंदर ही अंदर छुपकर पूरी चर्चा को गड़बड़ ना करें। ये इमोशंस को भी एक तरह का डेटा मानती है।
ये दिलचस्प है, मतलब इमोशंस को इग्नोर करने के बजाय उन्हें भी जगह देना। अच्छा, अब उस टोपी पर आते हैं जो शायद हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
आहा, काली टोपी, ब्लैक हैट।
हाँ
हाँ, ये है सावधानी की टोपी, क्रिटिकल थिंकिंग, जोखिम पहचानने की। इसका रोल है ये देखना कि कोई आइडिया क्यों काम नहीं कर सकता, उसमें क्या खतरे हैं, क्या कमियां हैं।
तो ये वो आवाज है जो कहती है, हाँ सुनने में तो अच्छा है लेकिन, और फिर 10 कारण गिना देती है कि ये क्यों फेल होगा।
हाँ, कुछ वैसा ही। हम भारतीय शायद इसमें थोड़े माहिर हैं।
शायद।
लेकिन काली टोपी सिर्फ नुक्स निकालना नहीं है, ये जरूरी है। ये नेगेटिविटी इमोशंस पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वो तो लाल टोपी का काम है।
अच्छा, तो फिर
ये लॉजिक पर आधारित होनी चाहिए। ये पूछती है, क्या ये हमारे बजट में फिट बैठता है, क्या ये मौजूदा पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं, क्या हमने इसके बुरे नतीजों के बारे में सोचा है। ये लॉजिक में कमजोरियां ढूंढती है। डी बोनो इसे सर्वाइवल हैट कहते हैं, अस्तित्व की टोपी, क्योंकि ये हमें बड़ी गलतियों से, बड़े खतरों से बचाती है, हमें जमीन पर रखती है।
लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर हम काली टोपी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें तो क्या ये नए आइडियाज को, मतलब हरी टोपी वाले आइडियाज को शुरू में ही खत्म नहीं कर देगी?
बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर नीली टोपी का रोल आता है, बैलेंस बनाने का।
अच्छा,
काली टोपी जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन इसका ओवर यूज, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, क्रिएटिविटी को मार सकता है। तो नीली टोपी तय कर सकती है कि काली टोपी कब और कितनी देर के लिए यूज करनी है, शायद नया आइडिया को थोड़ा सांस लेने देने के बाद।
ठीक है, संतुलन जरूरी है। अब काली टोपी का कोई साथी भी है जो थोड़ा
उजाला लाए।
हाँ,
पीली टोपी।
बिल्कुल,
पीली टोपी, येलो हैट, ये काली टोपी का लॉजिकल पॉजिटिव साथी है।
लॉजिकल पॉजिटिव?
हाँ, इसका रोल है आशावाद, बेनिफिट्स और फीजिबिलिटी, यानी व्यवहारिकता पर फोकस करना। ये पूछती है इसके फायदे क्या हैं, इस आइडिया में वैल्यू क्या है, हम इसे कामयाब कैसे बना सकते हैं।
तो ये सिर्फ हवाई उम्मीदें नहीं है, मतलब सब अच्छा होगा टाइप?
नहीं नहीं, काली टोपी की तरह है ये भी लॉजिक और सबूत पर आधारित होनी चाहिए। जैसे अगर कोई नया आइडिया है तो पीली टोपी सोचेगी कि इससे क्या अच्छा हो सकता है, कौन से मौके खुल सकते हैं, इसे करने के लिए क्या रिसोर्स हैं या कैसे जुटाए जा सकते हैं। लेकिन डी बोनो कहते हैं, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, कि बहुत से लोगों के लिए पीली टोपी वाली सोच काली टोपी की तुलना में कम नेचुरल होती है।
सच में नेगेटिव सोचना ज्यादा आसान है।
अक्सर हमें जानबूझकर कोशिश करके पॉजिटिव पहलू और वैल्यू ढूंढने पड़ते हैं, खासकर जब वो एकदम साफ ना दिख रहे हों। इसमें मेहनत लगती है, इसका गोल है संभावनाओं को तलाशना और उन्हें हकीकत बनाना।
ये तो सोचने वाली बात है कि पॉजिटिव सोचने में ज्यादा मेहनत लगती है। अच्छा, अब आखिरी टोपी जो मेरे ख्याल से सबसे मजेदार हो सकती है।
हरी टोपी, ग्रीन हैट।
हाँ
हाँ, ये है क्रिएटिविटी की टोपी, नए आइडियाज, ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज। इसका रोल है लीक से हटकर सोचना, नए सोल्यूशन खोजना।
ये क्या पूछती है?
ये पूछती है क्या इसे करने के और भी तरीके हैं, कुछ एकदम नए हटके आइडियाज क्या हो सकते हैं, अगर हम ये वाली रुकावट हटा दें तो क्या होगा, व्हाट इफ।
अच्छा, तो यहाँ पर सारे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का स्वागत है, चाहे वो कितने भी अजीब क्यों न लगे शुरू में।
बिल्कुल, हरी टोपी के तहत आलोचना या जजमेंट की कोई जगह नहीं है, जीरो क्रिटिसिज्म।
वो काम बाद में दूसरी टोपियों का है।
हाँ, वो काली और पीली टोपी बाद में करेंगी, यहाँ लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा विचार पैदा करना, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, शुरू में उनका न्याय करना नहीं।
और यहीं पर वो लिटरल थिंकिंग काम आती है।
एग्जैक्टली, पुराने पैटर्न तोड़ना, कुछ उकसाने वाली बातें कहना, प्रोवोकेशंस, मान्यताओं को चैलेंज करना, हरी टोपी का लक्ष्य है संभावनाओं का एक पूरा जंगल उगा देना।
वाह, तो ये है 6 टोपियां, नीला मैनेजर, सफेद फैक्ट्स, लाल फीलिंग्स, काली सावधानी, पीली उम्मीद और हरी क्रिएटिविटी। हर एक का अपना साफ रोल और गोल।
हाँ,
अब अगर हम जरा पीछे हटकर इस पूरी प्रणाली के जो बड़े संदेश हैं, जो थीम्स हैं, उन पर बात करें, तो सबसे पहला क्या जहन में आता है?
मेरे ख्याल से सबसे जरूरी थीम है पैरेलल थिंकिंग बनाम एडवर्सरियल थिंकिंग, मतलब समानांतर सोच बनाम टकराव वाली सोच।
हाँ, आपने शुरू में जिक्र किया था।
डी बोनो बार बार इस पर जोर देते हैं कि जो पारंपरिक बहस का तरीका है ना, जहाँ दो पक्ष एक दूसरे को बस गलत साबित करने में लगे रहते हैं, वो अक्सर कहीं नहीं पहुँचता या बहुत वक्त लेता है।
हाँ।
इसके बजाय जब सब लोग एक ही दिशा में एक ही टोपी पहनकर सोचते हैं तो कहीं ज्यादा बेहतर और तेज नतीजे मिलते हैं सहयोग से।
ये बात तो भारतीय माहौल में बहुत काम की है, चाहे ऑफिस की टीम हो या घर पर परिवार, मिलकर किसी लक्ष्य पर काम करना बजाय एक दूसरे से लड़ने के।
बिल्कुल, ये कोलैबोरेशन की, सहयोग की भावना को बढ़ाता है।
दूसरी बड़ी थीम क्या होगी?
वो है ईगो को परफॉर्मेंस से अलग करना।
अच्छा, वो कैसे?
ये टोपियां ना एक तरह से रोल प्ले करने का मौका देती हैं।
हाँ, ये बात मुझे बहुत पावरफुल लगी थी। आप ये नहीं कह रहे कि मैं ये सोचता हूँ, बल्कि ये कह रहे हैं कि मेरी काली टोपी ये कह रही है।
बिल्कुल, आप कह सकते हैं मैं अभी काली टोपी पहनकर सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे ये खतरे नजर आ रहे हैं, या हरी टोपी के नाते मेरा एक अजीब सा आइडिया है।
इससे आलोचना करना या कोई हटके विचार रखना कम पर्सनल हो जाता है, ज्यादा सेफ।
हाँ, आप विचार पर हमला कर रहे हैं, व्यक्ति पर नहीं, और ये आज के जमाने में कितना जरूरी है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो या सोशल मीडिया की बहस है,
जहाँ लोग अपने विचारों से अपनी पहचान को इतना जोड़ लेते हैं कि कोई भी असहमति पर्सनल अटैक लगती है।
सही कहा, ये टोपियां ऐसे बदलने में मदद करती हैं।
तीसरी अहम बात
वो है कि सोचना, थिंकिंग, एक जानबूझकर करने वाली एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं जो बस हो जाती है।
ये कोई जादू नहीं है,
ये सीखने वाले के लिए बहुत हिम्मत देने वाला विचार है। डी बोनो कहते हैं कि सोचना एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है,
और नीली टोपी इसी का प्रतीक है।
हाँ, हम अपनी सोच को डायरेक्ट कर सकते हैं, उसे स्ट्रक्चर दे सकते हैं, अपने गोल के हिसाब से ढाल सकते हैं।
और आखिरी लेकिन बहुत जरूरी थीम,
वो है इमोशन और इंट्यूशन की वैधता, मतलब हमारी भावनाओं और अंतर्ज्ञान का भी महत्व है।
हाँ, लाल टोपी।
बिल्कुल, लाल टोपी का यही महत्व है। ये मानती है कि हमारी फीलिंग्स, हमारी गट फीलिंग्स भी जानकारी का एक जरूरी सोर्स हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए कि वो लॉजिक पर आधारित नहीं है। खासकर ऐसे माहौल में जैसे कहीं कॉर्पोरेट सेटिंग्स में होता है, जहां सिर्फ डेटा और लॉजिक की पूजा होती है।
वहां लाल टोपी याद दिलाती है कि भाई हम इंसान हैं, मशीन नहीं। मानवीय पहलू भी मायने रखता है।
सही कहा। खासकर भारत जैसे देश में, जहां शायद हम अपनी भावनाओं को सीधे सीधे व्यक्त करने में कभी कभी हिचकते हैं, लाल टोपी एक सेफ तरीका दे सकती है उन्हें सामने लाने का।
अच्छा, अब कुछ यादगार बातों या विचारों की बात करते हैं जो इस किताब से निकल कर आते हैं। एक तो वो कन्फ्यूजन वाला था।
हाँ, दी बोनो कहते हैं, सोचने की मुख्य कठिनाई भ्रम है। हम एक ही बार में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। भावनाएं, जानकारी, तर्क, आशा और रचनात्मकता सब हम पर हावी हो जाते हैं। ये बहुत सारी गेंदों से करतब दिखाने जैसा है।
ये साफ करता है कि टोपिया कैसे हर चीज को उसकी जगह पर रखकर एक वक्त में एक रोल पर फोकस करके इस कन्फ्यूजन को दूर करती हैं।
बिल्कुल। और समानांतर सोच पर वो कथन, समानांतर सोच का सार ये है कि किसी भी क्षण हर कोई एक ही दिशा में देख रहा होता है। ये पारंपरिक तर्क या टकराव वाली सोच के बिल्कुल विपरीत है, जहां पक्ष जानबूझकर एक दूसरे का सामना करते हैं।
ये सहयोग की ताकत दिखाता है। जब सब मिलकर एक गोल की तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जी वेस्ट होने के बजाय जुड़ती है।
और इंटेलिजेंस और थिंकिंग स्किल पर भी एक बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने।
हाँ, वो क्या थी?
कई अत्यधिक बुद्धिमान लोग खराब विचारक होते हैं, औसत बुद्धि के कई लोग कुशल विचारक होते हैं। कार की शक्ति इस बात से अलग है कि कार कैसे चलाई जाती है।
वाह, क्या बात है। मतलब सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं है।
नहीं, सोचने का सही तरीका, सही तकनीक यानी ड्राइविंग स्किल ज्यादा जरूरी है। और ये स्किल सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस से आती है।
ये नीली टोपी के मैनेजमेंट और बाकी टोपियों के सही इस्तेमाल से जुड़ा है।
हाँ, और लाल टोपी पर वो कथन फिर से याद दिलाता है। लाल टोपी का उद्देश्य भावनाओं और अंतर्ज्ञान को दृश्यमान बनाना है।
हाँ।
लाल टोपी उन्हें सही ठहराने की आवश्यकता के बिना भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देती है।
हाँ, उन अनदेखी अनकही फीलिंग्स को सतह पर लाने का महत्व बताता है, जो बैकग्राउंड में रहकर हमारे फैसलों को असर करती रहती हैं। उन्हें मानना जरूरी है।
बिल्कुल।
चलिए अब बात करते हैं कि इन सब आइडियाज का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे हो सकता है। ऑफिस में, मीटिंग्स में तो इसका बहुत जिक्र होता है।
हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक टीम मीटिंग हो रही है किसी नए प्रोजेक्ट के प्रपोजल पर, उसे इन टोपियों से कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं?
बताइए।
शुरुआत नीली टोपी से, मीटिंग का गोल और एजेंडा साफ करना।
ओके।
ओके, फिर सफेद टोपी, प्रोजेक्ट से जुड़े सारे फैक्ट्स, डेटा, मार्केट रिसर्च सामने रखना, क्या पता है क्या नहीं पता।
ठीक है।
फिर शायद पीली टोपी, इस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव्स क्या हैं, बेनिफिट्स, अवसर। इसके बाद काली टोपी, इसमें रिस्क क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, कमियां क्या हैं। फिर हरी टोपी, इन चुनौतियों से निपटने के लिए या प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने के लिए नए आइडियाज, ऑल्टरनेटिव्स।
अच्छा।
शायद बीच में या अंत में थोड़ी देर लाल टोपी, इस प्रपोजल को लेकर टीम की गट फीलिंग क्या है, कोई चिंता या उत्साह। और अंत में फिर से नीली टोपी, पूरी चर्चा का सार, क्या फैसले हुए और अगले कदम क्या होंगे।
इस तरह से मीटिंग कितनी फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो सकती है। हर पहलू पर बात हो गई और टकराव भी कम हुआ होगा, क्योंकि सब एक ही रोल निभा रहे थे।
हाँ बिल्कुल। सुना है IBM, सीमेंस जैसी बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं, और ये सिर्फ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए नहीं, बल्कि इनोवेशन सेशन में, जहां हरी टोपी ज्यादा जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यहाँ तक कि परफॉर्मेंस रिव्यू में भी काम आ सकता है।
और क्या ये पर्सनल लाइफ में भी काम आ सकता है?
क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकता है। मान लीजिए कोई बड़ा पर्सनल फैसला लेना है, करियर बदलना है या घर खरीदना है।
हाँ।
आप अकेले या अपने पार्टनर के साथ इन टोपियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कैसे?
सफेद टोपी, फैक्ट्स क्या हैं, नई जॉब की सैलरी, घर की कीमत, लोकेशन वगैरह।
ठीक।
लाल टोपी, मुझे या हमें कैसा महसूस हो रहा है, एक्साइटमेंट, डर, कन्फ्यूजन। हरी टोपी, रिस्क क्या है, नौकरी चली गई तो, लोन नहीं मिला तो। पीली टोपी, फायदे क्या होंगे, बेहतर लाइफस्टाइल, खुशी, सिक्योरिटी।
ठीक है।
हरी टोपी, और क्या ऑप्शंस हैं, किराए पर रहना, पार्ट टाइम काम, कोई और शहर। और नीली टोपी, पूरी सोचने की प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज करना और आखिर में फैसला लेना।
ये तो कमाल है, ये तो रोजमर्रा की छोटी मोटी अनबन या बहस में भी शायद काम आए।
बिल्कुल, जैसे परिवार में किसी बात पर झगड़ा हो गया तो सफेद टोपी से पूछ सकते हैं, असल में हुआ क्या था, फैक्ट्स क्या हैं?
हाँ।
और फिर लाल टोपी से, तुम्हें कैसा लगा, मुझे कैसा लगा?
शायद आधी प्रॉब्लम वहीं सुलझ जाए।
हाँ,
क्योंकि अक्सर हम फैक्ट्स और फीलिंग्स को मिला देते हैं।
सही कहा। और भारत में जहाँ अक्सर ग्रुप डिसीजन होते हैं, चाहे परिवार में हो या मोहल्ले की कमेटी में, ये तरीका सबकी बात सुनने और हर पहलू पर सोचने में बहुत मददगार हो सकता है,
ताकि कोई जरूरी पॉइंट छूट ना जाए और सबको लगे कि हाँ भाई, हमारी बात भी सुनी गई।
हाँ हाँ, ये कंसेंसस बनाने का, आम सहमति बनाने का एक अच्छा जरिया बन सकता है।
इस पूरी बातचीत से अगर मुझे एक चीज सबसे ज्यादा याद रहेगी तो वो ये है कि सोच को इस तरह अलग अलग मोड या रोल में तोड़ने की ताकत कितनी जबरदस्त है। हम अक्सर सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में उलझ जाते हैं। ये टोपियां चीजों को इतना साफ और ऑर्गेनाइज कर देती हैं।
और मेरे लिए सबसे असरदार बात शायद इस सिस्टम की सादगी है और इसकी प्रैक्टिकलिटी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
हाँ बिल्कुल,
ये एक ऐसा टूल है जिसे कोई भी कभी भी इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। और जो इसका मूल विचार है ना, टकराव से सहयोग की तरफ बढ़ना, मिलकर किसी गोल के लिए सोचना, वो आज के टाइम में इतना जरूरी लगता है।
तो सुनने वालों के लिए हमारा अंतिम विचार या सवाल ये है, जरा सोचिए, अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी जरूरी बातचीत या फैसला लेते समय जानबूझकर इनमें से सिर्फ एक या दो टोपियों का सही समय पर इस्तेमाल करें।
जैसे
जैसे किसी मुश्किल बातचीत में पहले सिर्फ सफेद टोपी यानी फैक्ट्स का इस्तेमाल करना, या किसी नए आइडिया पर तुरंत काली टोपी पहनने से पहले थोड़ी देर पीली टोपी यानी बेनिफिट्स पहनना। तो आपकी बातचीत या फैसलों की क्वालिटी कैसे बदल सकती है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।